समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
धरो दीवार पे शक्लें सी बनाने आई, धरो दीवार पे शक्लें सी बनाने आई, फिर ये बारिश मेरी तन्हाई चुराने आई। दोस्तों, धीरे धीरे गर्माते दिल्ली के दिनों को फिर से सुहाना कर रही इस रिमझिम के नाम शेर के साथ नमस्कार, आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और इस्तकबाल करते हैं हम परिक्रमा में। दोस्तों, यहां स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है उस परिक्रमा पर चलने का जहां आधा घंटे की मुलाकात में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, ले चलेंगे आपको अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। और इसके अलावा रोज की तरह खेल गतिविधियों पर बराबर रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी, आपके जाने पहचाने हरदिल अजीज, अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
हेलो मुनीश, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे ऑफ कोर्स इज माय को-होस्ट मुनीश, एंड फॉर यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first.
जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
गवर्नमेंट एक्सटेंड्स इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो बाय वन डे टिल द 21st ऑफ दिस मंथ। यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट्स वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर एट AI समिट, 51 स्टार्टअप्स टू शोकेस AI इनोवेशंस।
निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, मतदान होगा 16 मार्च को।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैंसल्स 5% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम कम्युनिटी इन जॉब्स एंड एजुकेशन।
और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम अहमदाबाद में खेलेगा नीदरलैंड से।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India AI Impact Summit. Well, Munish, on the 16th of this month, the India AI Impact Summit 2026 officially commenced at the iconic Bharat Mandapam in New Delhi. And here's what makes it historic. This is the first international artificial intelligence summit hosted in the global south, and a defining moment not just for India, but for emerging economies worldwide. And the summit positions India as a pivotal voice in the global AI dialogue.
Well, Abhishek, definitely it's a very stellar show and drawing great crowds. Aur khushkhabri ki baat ye hai dosto ki sarkar ne India AI Impact Expo ko ab ek din badha diya hai. Ji haan, is mahine ki 21 tarikh tak ise kar diya hai. Aur Nayi Delhi mein media ko jankari dete hue Electronics aur Suchna Pradyogiki Mantralay ke sachiv S. Krishnan ne ye bataya hai कि प्रदर्शकों, नव प्रवर्तकों यानी इनोवेटर्स और आगंतुकों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 20 और 21 तारीख को एक्सपो रात 8 बजे तक खुला रहेगा। सचिव ने यह भी बताया है कि कल एक्सपो आम जनता के लिए बंद रहेगा और ये सिर्फ आमंत्रित मेहमानों के लिए खुलेगा।
Yes, and the global leaders continue to arrive in New Delhi for the India AI Impact Summit 2026. President of Spain Pedro Sanchez Perez Castillon, Vice President of Seychelles Sebastian Pillay, and Prime Minister of Mauritius Dr. Naveen Chandra Ram Gulam today arrived in the national capital for the AI summit. President of the Slovak Republic Peter Pellegrini has also arrived in New Delhi. Netherlands Prime Minister Dick Schoof has landed in New Delhi to attend the India AI Impact Summit. Kazakhstan Prime Minister Olgas Bektenov also arrived in the national capital for the AI summit. And let's also talk about one of the very key highlights, Munish. A key highlight is a dedicated MIV pavilion of the Ministry of Information and Broadcasting, which showcases India's thriving AI startup ecosystem at the intersection of media, entertainment, gaming and creative technologies. And through the Waves Creators Corner, the pavilion offers a dynamic platform for live demonstrations, panels, masterclasses, fireside chats and startup showcases, enabling direct interactions among founders, policymakers, investors, creators एंड इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स।
और अभिषेक, बता दें हम अपने सुनने वालों को कि इस प्रदर्शनी में खास तौर से AVGCXR यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी और मीडिया टेक क्षेत्रों पर खास तौर से ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां 51 स्टार्टअप, कंटेंट निर्माण, इमर्सिव एक्सपीरियंस, बहुभाषी टूल्स, एडेप्टिव गेम प्ले और डिजिटल स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में बाजार के लिए तैयार AI संचालित समाधानों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह अभिसरण विकास, रोजगार और नवाचार को रणनीतिक चालक के रूप में सरकार से मिली मान्यता को दर्शाता है।
Yes, of course, and the MIB has established a dedicated pavilion at the India AI Impact Summit 2026 to present India's AI startup capabilities across media, entertainment, gaming and creative technologies. And the pavilion operates within a sector that has transitioned from cultural relevance to economic centrality.
और गौरतलब ये है दोस्तों कि भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का मूल्य 2024 में लगभग 2.5 trillion रुपए था, जो लगभग 7% की औसत वार्षिक वृद्धि की दर से आगे बढ़ रहा था। और अकेले डिजिटल मीडिया का इस क्षेत्र के राजस्व में लगभग 1/3 हिस्सा है, जो प्लेटफॉर्म आधारित उत्पादन और वितरण मॉडल की तरफ तेजी से हो रहे बदलाव को दिखाता है। जी हाँ, व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की आजीविका का समर्थन करता है और लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का तो ये वार्षिक उत्पादन करता है।
Yes, Munish, let us also talk about how the startups are demonstrating AI-assisted filmmaking, virtual production, automated editing, multilingual dubbing, voice synthesis, AI avatars and digital storytelling tools. And these applications improve efficiency across production pipelines while expanding multilingual reach in a country with diverse linguistic markets. And as digital revenues outpace traditional formats, AI integration strengthens scalability and cost optimization across content workflows. And now let's go over and listen to some of the participants who are showcasing AI tech at the India AI Impact Summit.
Yeah, hi, I'm Raj Patnaik. I'm the Chief People and Strategy Officer with Nairuti Climate and Ecosystems Private Limited. Going to this India AI Summit, I would say this is a very good platform by the Government of India so that we are able to showcase this to various other sectors and stakeholders.
I'm the co-founder in the Dorit. It is really amazing what future is there. At least the people is getting alarmed what is happening and what is going to happen in the future.
I work for Power Grid Center of Excellence for Cybersecurity. We are here at Power Grid MOP Pavilion. We have come here to experience the AI Summit and also to showcase whatever that we have developed in terms of cybersecurity and AI and ML part of it for the power grid operation and grid security. We feel honored to be here.
और दोस्तों, मोबाइल की व्यापक पहुंच और डिजिटल रूप से एक जागरूक आबादी की वजह से भारत उपयोगकर्ताओं के आधार से दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग बाजारों में शुमार हो गया है। बढ़ते हुए मुद्रीकरण, घरेलू स्टूडियो के विस्तार और वैश्विक प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकरण से गेमिंग का स्वरूप अब जन भागीदारी से बदलकर एक सुनियोजित डिजिटल उद्योग के विकास में तब्दील हो रहा है।
एब्सोल्युटली मुनीश, एंड द एमआईवी पेविलियन शोकेसेस इंक्लूड जेनरेटिव एआई फॉर गेम एसेट डेवलपमेंट, रियल टाइम कमेंट्री सिस्टम्स, एडेप्टिव गेम प्ले इंजन्स, इमर्सिव एनवायरनमेंट्स एंड इंटरएक्टिव स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजीज। And these innovations demonstrate the transition from gaming consumption to AI native game development and immersive platform creation.
जी हाँ, और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी को शामिल करने वाला व्यापक AVGCXR इकोसिस्टम रचनात्मक अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक प्रौद्योगिकी प्रधान क्षेत्र है। भारत का एनिमेशन और VFX क्षेत्र वैश्विक स्तर पर एकीकृत उत्पादन केंद्र के तौर पर काम करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, विज्ञापन अभियानों और इमर्सिव अभिनवों में अनुभवों को अगर हम देखें तो उनमें ये अपना योगदान करता है। अभिषेक,
यस, एंड द MIV पेविलियन फीचर्स AI एप्लीकेशंस फॉर पॉडकास्ट्स, वर्चुअल स्टूडियोज, इमर्सिव थिएटर, एक्सपीरियंशियल मीडिया एंड क्रिएटर टूल्स दैट इंटीग्रेट इनटू दिस प्रोडक्शन पाइपलाइंस। With projections of nearly 2 million direct and indirect jobs over the next decade in the AVGC sector, AI-enabled creative technologies are positioned as both economic and employment multipliers.
MIB Pavilion में स्थित Waves Creators Corner, पैनल चर्चाओं, मास्टर क्लासेस, अनौपचारिक विचार विमर्श और स्टार्टअप प्रदर्शनियों के लिए एक सुव्यवस्थित मंच प्रदान करता है। इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 में भारत के एवीजीसी एक्सआर और मीडिया टेक क्षेत्र के 51 स्टार्टअप्स जो हैं वो एआई संचालित नवाचारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। एमआईबी एडोब के साथ साझेदारी में इंडिया एआई प्रदर्शनी के दौरान भारत के एआई सक्षम रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदर्शन हो रहा है और इसका एक खास आकर्षण है कथावतार, जी हां, जिसमें भारत में निर्मित 5 लघु फिल्मों यानी लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स, मिगोई, उत्तरायण, द बाबर सीक्रेट और यापसोरस का एक विशेष प्रदर्शन शामिल है। इसका प्रदर्शन वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर के एआई थिएटर में किया जाएगा। एडोब फिल्म का भविष्य एआई रचनात्मकता और शिल्प शीर्षक से एक विषयगत सत्र का भी आयोजन किया जा रहा है और साथ ही कंटेंट क्रिएशन हब भी है जो तेज, स्केलेबल और नवीन कंटेंट निर्माण के लिए एआई पर आधारित वीडियो निर्माण वर्कफ्लो का प्रदर्शन करेगा।
And key technology demonstrations include zero-touch autonomous newsroom, Bhasha Wall with multilingual dubbing, and AI sign language avatars Samvad Setu, the director's chair, AI podcast studio, conversational humanoid robots, and voice cloning solutions.
तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं दोस्तों कि India AI Impact Summit 2026 ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स और रचनात्मक पेशेवरों के लिए वैश्विक नवाचार, पूंजी और नीति नेटवर्क से जुड़ने के नए रास्ते जो हैं वो खोल दिए हैं। 300 से ज्यादा चुनिंदा पवेलियन और लाइव प्रदर्शनों के साथ इंडिया एआई एक्सपो 2026 में 600 से ज्यादा स्टार्टअप और 13 देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं, जिसे मीडिया और मनोरंजन, एवीजीसी एक्सआर, गेमिंग, इमर्सिव टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान लगातार बढ़ रही है। 100 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियां, अनुसंधान निकायों और सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन प्रणालियों और नियामक परिदृश्यों की जानकारी प्रदान करती हैं और इस तरह के आदान प्रदान से रचनात्मकता, एआई, एनिमेशन, गेमिंग और आईपी आधारित सामग्री में बेंचमार्किंग को बढ़ावा मिलता है और साथ ही सह निर्माण, निवेश और नए बाजार अवसरों के नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं।
Yes, and the MIV Pavilion at the India AI Impact Summit 2026 demonstrates how India is translating its AI vision into visible, market-ready outcomes led by startups, creators and innovators.
और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है उनके पास खास आपके लिए और हमारे लिए।
Yes, and we start off with a story from Agartala. With the idea of providing a safe growth and overall development to children across the state, Tripura Social Welfare and Social Education Department and Tripura Child Rights Protection Commission are taking various steps, and one of these is the Child Marriage Free Tripura campaign under the Child Marriage Free India campaign, and we have our report.
Major efforts are being made to ensure overall development of children in Tripura and to create adequate opportunities for them to become ideal citizens of future. As a part of that campaign, a special awareness campaign on Child Marriage Free India was launched in West Tripura District, arranging a short program at the office of the Tripura Child Rights Protection Commission in Agartala. Explaining the main objective of this campaign, Tripura Child Rights Protection Commission Chairperson Jayanti Deburma said, "This is our effort to free girls from the curse of child marriage."
Tripura mein bal vivaho ko mukt karne ke liye ek awareness program jari hai. Aaj hamare yahan se West Tripura District mein har block प्रचार अभियान के लिए गाड़ी के द्वारा
In this campaign, 3 special promotional vehicles will travel to markets, hearts, various public places and localities in each panchayat level of 9 block areas under 3 subdivisions of West Tripura district to create awareness about the prevention of child marriage. In the beginning of the program, one promotional vehicle will be stationed in Mohanpur block area, the second in Bamutia block area and the third in each panchayat under Dukli block area. For Parikrama, Shuman Bhattacharji, Akashvani Agartala.
दोस्तों, अब ये तो हम जानते ही हैं कि भारत में हर राज्य की चित्रकारी की अलग अलग शैलियां हैं, जैसे बिहार की मधुबनी हुई, राजस्थान की पिछवाई, ओडिशा और बंगाल की पटचित्र और महाराष्ट्र के आदिवासी समाज की वर्ली, और ऐसी कई शैलियां हैं जिनके बने चित्र हमने आज तक या तो सिर्फ दीवारों पर देखे या कैनवास पर उकेरे भी हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी नगर के महिला संचालित उपक्रम शिखाज कारीगरी ने इन चित्र शैलियों को कपड़े पर उतारा है। जी हाँ, इन शैलियों से बने तरह तरह के प्रावधान हाल ही में संपन्न हुए सूरज कुंड मेले में दर्शाए गए हैं। और अपनी इस नई पहल के बारे में शिखाज कारीगरी की संचालक परभणी की शिखा अजमेरा ने कुछ और जानकारी भी हमसे साझा की है।
इंडिया का जो रिच कल्चर ट्रेडिशन हेरिटेज है, इंडिया का जो लेगेसी है, हम वो फैब्रिक पे उतारने की कोशिश करते हैं। पिछवाई, मधुबनी, गोंडा आर्ट, वारली आर्ट जैसी कई तरह की आर्ट फॉर्म्स है जिसे हमने अभी तक सिर्फ दीवारों पे या कैनवास पे ही देखा है। आर्ट और आर्टिस्ट को इमॉर्टल बनाने के हिसाब से और इंडिया के ट्रेडिशन को आगे ले जाने की एक चाह से शिखाज कारीगरी ने देश के 100 से भी अधिकतर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हुए इंडिया के आर्ट को फैब्रिक पे उतारने की कोशिश की है। मुझे खुशी है कि शिखाज कारीगरी बहुत कम समय में ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, इसके साथ जुड़ पाया है। देश के विभिन्न कलाकारों के साथ जुड़कर उनके साथ हाथ मिलाकर शिखाज कारीगरी नए स्टाइल और ग्लैमर का टच देते हुए इंडिया के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है।
Yes, and now we turn attention to Ranchi, and the administration of Ramgarh district in Jharkhand has set a historic example of social inclusion. On the special initiative of Deputy Commissioner Faiz Ak Ahmed Mumtaz, the state's first trans cafe has been inaugurated, and we have more from a correspondent.
झारखंड के रामगढ़ जिले के छत्तरमांडू स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क में खुले इस अनूठे कैफे का उद्घाटन उपायुक्त और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने संयुक्त रूप से किया। उपायुक्त फैजक अहमद मुमताज के अनुसार इस कैफे का संचालन पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा किया जाएगा, जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
रामगढ़ जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि वो आइस ब्रेक हो और इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उसी क्रम में हम लोग काफ़ी टाइम से बहुत सारी स्कीम से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अपने रामगढ़ वालों को जोड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पे ट्रांस कैफे की शुरुआत हुई है, जो ट्रांस समुदाय द्वारा मैनेज किया जाएगा और उनके द्वारा ही रन किया जाएगा।
ये परियोजना जिला प्रशासन, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और किन्नर उत्थान समिति के साझा सहयोग से साकार हुई है। किन्नर उत्थान समिति की अध्यक्ष हिमांशी सखी ने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए प्रशासन का आभार जताया।
तो ये सब बहुत ही यूनिक चीजें हैं जो कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत ही यूनिक।
ये पहल कॉफी के हर कप के साथ एक सपने को साकार कर रही है। इस पहल से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशीलता और स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। परिक्रमा के लिए रामगढ़ से के तिवारी के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
दोस्तों, गुजरात सरकार के मार्गदर्शन में वन विभाग ने कच्छ के छोटे रण के प्राकृतिक स्वरूप को संवारने के लिए एक अभिनव परियोजना शुरू की है। जी हां, वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित बांधों द्वारा करीब 1,35,00,000 लीटर वर्षा जल का संचयन होगा, जो वन्य जीवों के लिए संजीवनी बन जाएगा और क्षेत्र में जैव विविधता और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को एक नई दिशा देगा। तो आइए सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता परेश मारू की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार द्वारा कच्छ के छोटे रण क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और वन्य जीवों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोटवाड़िया ने इस संबंध में विवरण देते हुए बताया कि रण के शुष्क वातावरण में जल संचयन करने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से बांधों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 विशेष प्रकार के बांध तैयार किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आगामी मानसून में लगभग 1,35,00,000 लीटर वर्षा जल का संचयन होगा। यह संचित जल अगले 2-3 वर्षों में पीने योग्य बन जाएगा, जो रण के वन्य जीवों के लिए अमृत के समान साबित होगा। केवल जल संचयन ही नहीं, बल्कि मिट्टी में नमी बढ़ने से स्थानीय घास प्राकृतिक रूप से उगेगी, जिससे शाकाहारी जानवरों और प्रवासी पक्षियों के लिए उत्तम आवास और भोजन उपलब्ध होगा। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री प्रवीण माली ने कहा कि इसी योजना से जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। जलाशयों के बीच पक्षियों के विश्राम के लिए विशेष टीले भी बनाए गए हैं। इस नवीन प्रयोग से कच्छ का छोटा रण भविष्य में पर्यावरण प्रेमी पर्यटन क्षेत्र के रूप में वैश्विक स्तर पर एक समृद्ध पहचान प्राप्त करेगा। परिक्रमा के लिए भुज से परेश मारू।
और दोस्तों अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन भारत और नीदरलैंड्स का मुकाबला होगा और ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा।
Yes, and moving on to some business news. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty ended with modest gains today. The Sensex climbed 283 points to end at 83,734, while the Nifty rose 94 points to settle at 25,819. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
आइए अब हम याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को और स्मरण करें उन महान व्यक्तित्वों को भी जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। दोस्तों
18th February is the day when the Indian Home Rule Society was founded in London in 1905. The Indian Home Rule Society sought to promote the cause of self-rule in British India. The organization was founded by Shyamji Krishna Varma with support from a number of prominent Indian nationalists in Britain at the time, including Bhikaji Kama, Dadabhai Nauroji, and S.R. Rana.
The Indian Home Rule Society was a metropolitan organization modeled after Victorian public institutions of the time. It had a written constitution, and the stated aim was to secure home rule for India and to carry on a genuine Indian propaganda in Britain by all practicable means. The IHRS was open for membership to Indians only. It found significant support amongst Indian students and other Indian populations in Britain.
The Indian Home Rule Society maintained close contact with revolutionary movements in India. The society was the founder of the India House in London. India House was a student residence that was open to promote nationalist views among Indian students in Britain. The Indian Home Rule Society, along with Shyamji Krishna Varma's journal, The Indian Sociologist, laid the foundation of the militant Indian nationalist movement in Britain. After Shyamji Krishna Varma shifted to Paris in 1907, the society gave way to the secret nationalist society of Abhinav Bharat Mandal, founded by V.D. Savarkar.
18th of February is also the day when the Royal Indian Navy Revolt of 1946 started in Mumbai. The strike by the ratings of the Royal Indian Navy came at a time when the Indian nationalist sentiment had reached its peak with the launch of Quit India movement and the end of the Second World War. It was triggered by a group of 20 young ratings of the Royal Indian Navy stationed on the HMIS Talwar.
While the immediate trigger was the demand for better food and working conditions, the agitation soon turned into a wider demand for the release of all political prisoners and independence from British rule. The day after the strike began, the ratings went around Mumbai in lorries, waving the Indian flag and fought with Europeans and policemen who tried to stop them.
As HMIS Talwar was also the communications training school, the ratings used wireless codes to communicate among themselves and to spread the message across all naval stations. Within a few days, the rebels had managed to take control of 74 other ships stationed in Mumbai, Karachi, Chennai, Kolkata, and other parts of the British Empire. The reports on radio and in newspapers spread like wildfire. Soon, ordinary people also joined the ratings in the revolt and life came to a virtual standstill in both Mumbai and Kolkata. There were meetings, processions and strikes in many cities across India. Students boycotted classes in solidarity.
The response of the state was brutal. Hundreds of Indian citizens were killed and thousands were injured in the British police firing on the demonstrators. Finally, Sardar Patel managed to make the rating surrender on the 24th of February 1946. The revolt of the naval ratings remains a legend today. It was an event that further strengthened the determination among all sections of the Indian people to see the end of British rule. In memory of the revolt, a naval uprising memorial stands today in Mumbai.
Yes, and we're also remembering Ustad Abdul Rashid Khan, who passed away on this day in 2016. He was a legendary Indian classical vocalist of the Hindustani music tradition. A centenarian maestro, he was celebrated for his mastery over diverse genres, including khayal, dhrupad, dhamar and thumri.
तो आज ही पुण्यतिथि है भारतीय वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री अनिल कुमार दास की, जिनके नाम पर चंद्रमा के क्रेटर का नाम रखा गया दास।
Yes, and Chloe Anthony Uford Toni Morrison was born on this day in 1931. She was an American novelist and editor. She was awarded the Nobel Prize in Literature in 1993. Her first novel, The Bluest Eye, was published in 1970. The critically acclaimed Song of Solomon, 1977, brought her national attention and won the National Book Critics Circle Award. In 1988, Morrison won the Pulitzer Prize for Beloved in 1987. And we're also remembering Yoko Ono, who was born on this day in 1933. She's a Japanese artist, musician, activist, and filmmaker. Her work also encompasses performance art and filmmaking. Let's listen into a hit track, Happy Xmas, and it's from a 1975 album, Shaved Fish.
Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun.
और आज जयंती है दोस्तों 1927 में जन्मे खयाम साहब की भी, जिनका पूरा नाम था मोहम्मद जहूर खयाम। उन्होंने चार दशकों तक हिंदी फिल्मों के लिए संगीत दिया। उमराव जान के लिए मिला उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म कभी कभी के लिए फिल्म फेयर। संगीत नाटक अकादमी ने भी उन्हें सम्मानित किया और 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। आइए सुनते हैं उनकी कुछ बड़ी ही बेहतरीन यादगार फिल्मों के गीतों की ये झलक।
Yes, and Sajid Nadiadwala was also born on this day in 1966. He's a film producer, film director, screenwriter who works in Hindi cinema. Let's listen in to a dialogue from one of his movies.
जिंदा ही थे तुम ये सब।
मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक। वापस आना तेरे काम है।
तो ये सब ड्रामा क्यों किया?
पता है, जब मेरे दोस्तों की आज चोरी होनी शुरू हुई तो स्टक हो गया मैं। टोटल बैंक सब पे नजर रखी। बाद में पता चला के घर का भेदी लंकट आता है।
और दोस्तों वक्त हो गया आपसे अनुमति लेने का, इजाजत दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा को
और माई सेल्फ अभिषेक मुखोपाध्याय।
दोस्तों आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। दीजिए इजाजत,
नमस्कार।